सज्जनों, आप सबको नमस्ते। संस्कृत में एक बड़ा सुंदर छोटा सा पुस्तक है, बुक है, उसका नाम है नीति शतक। ऋषि भर्तृहरि ने लिखा है, उसमें 100 श्लोक हैं। लाइफ से, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो टिटबिट्स हैं उनसे रिलेटेड। एक अचानक एक सुंदर श्लोक पर नजर पड़ा, सोचा आपके बड़े काम आएंगे। श्लोक है, संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते मध्ये सागर शक्ति मध्यपतितं तौन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणाः संसर्गतो देहिनाम। पानी का एक बूंद जब गर्म तावा पर पड़ता है तो इवापोरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है उसी क्षण। वही पानी का बूंद जब किसी कमल के पत्ते पर गिरता है तो मोती की तरह चमकने लगता है। वही पानी का बूंद जब किसी ऑयस्टर पर गिरता है तो वही बाद में मुक्ता मोती बन जाता है। पानी का बूंद तो वही है, पर अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग चीजों के साथ एसोसिएशन से उसकी नेचर में, क्वालिटीज में चेंजेस आ जाते हैं। ये श्लोक है, हिंदी में कहते हैं संग दोष या संग गुण। कोई व्यक्ति कैसा है, बिकॉज ऑफ मे बी हीज और हर एसोसिएशन, गुड और बैड। हर इंसान तो पैदा इसी अच्छा ही होता है, शुद्ध होता है, बुद्ध होता है, प्योर होता है, पवित्र होता है। तो जिस तरह को उसको एटमॉस्फेयर मिलता है, कंपनी मिलती है, पेरेंटिंग होती है, फ्रेंड्स मिलते हैं, जिस तरह के एनवायरमेंट में वो पलता है, बढ़ता है, एजुकेशन लेता है, समझ लेता है, बाद में वो वैसा ही बन जाता है। एक अलग एनवायरमेंट में रखिए, वो अलग बन जाएगा। ऐसा कहा जाता है, अंग्रेजी में बड़ा सुंदर कोट है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट ऑफ टाइम विथ। जिम रॉन नामक एक अमेरिकन एंटरप्रेनर है, ये इनका खूबसूरत स्टेटमेंट है। तुम कौन हो, अगर तुम्हें कोई डिफाइन करे तो कैसे डिफाइन करे? तुम्हारे सबसे करीब 5 लोग तुम्हारे लाइफ का जो एवरेज है, जो असेंस है, वो तुम हो। जनरली हम वही हैं। मैं कैसा हूं अगर किसी को जानना है तो मेरे फ्रेंड सर्कल को बचपन से लेकर आज तक पता करो, आपको पता लग जाएगा कि मैं किस टाइप का व्यक्ति हूं। क्योंकि हम अपने लाइक और डिसलाइक के हिसाब से फ्रेंड्स बनाते हैं। फ्रेंड्स का मतलब एसोसिएट होते हैं लोगों के साथ। जरूरी नहीं कि कोई क्लास फ्रेंड या स्कूल फ्रेंड हो, कोई बड़े भी लोग हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। और धीरे धीरे एक दूसरे से हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड होते इन्फ्लुएंस्ड होते रहते हैं। एक अंग्रेजी में और एक बड़ा सुंदर सेइंग है, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू हु यू आर। आप किन लोगों के साथ बैठते, उठते, समझते हैं, उससे पता लग जाएगा आपकी पर्सनालिटी क्या है। पार्टियों में आप जाते हैं, हर पार्टी का में लोग डिस्कशन अलग बन जाता है। कहीं किसी ऐसे एक दो लोगों के बीच में बैठ गए, आप कितना भी टॉपिक कहीं से भी शुरू करिए, घूम फिर करके पहुंच जाएगा शेयर मार्केट पर। पूरे घंटों तक वही शेयर मार्केट की डिस्कशन चलेगा और अंत भी वही होगा। वहीं आप अपना ग्रुप चेंज कर लीजिए, टॉपिक आप आत्मा परमात्मा से शुरू करिए, कोई बात नहीं, 5 मिनट के में आ जाएगा पॉलिटिक्स की। ट्रंप से शुरू होते होते मोदी और होकर के पूरे दुनिया पॉलिटिक्स, 5 घंटे भी बैठे रहो वही पॉलिटिक्स। तो ऐसे भी मौका मिलेगा जहां आप बैठते ही कोई भी टॉपिक छेड़िए, एंड होगा कोई स्पिरिचुअल या रिलीजियस डिस्कशन से। 10-15 मिनट में ही आपकी टॉपिक चेंज हो जाता है, आप कुछ भी छेड़िए, वो घुमा फिरा कर वो। आप एक बचपन में कहानी सुनते थे ना, एक बच्चा ऐसे तैयार करके गया गाय के ऊपर, निबंध बचपन में लिखते हैं ना, निबंध ऐसे, तो एक गाय के ऊपर एक ऐसे तैयार करके गया और पेपर में आया बाढ़ के ऊपर ऐसे लिखना था, फ्लॉड के ऊपर। तैयारी तो गाय के ऊपर है, तो उसने लिखा कि बारिश का मौसम था, हमारे गांव में बाढ़ आया, सब बह गया, उसमें गाय भी थी वो बह गई, और वो गाय के 4 पैर थे, 2 सिंग थे, पूरी गाय की ऐसे हो गई। मतलब शुरू आप कहां भी करिए, ऐसे गाय के ऊपर तैयार है तो उसी में खत्म होगा। तो जो हमारी पर्सनालिटी होती है ना, वैसे ही कोई भी टॉपिक कहीं भी शुरू करे, हम घुमा फिरा करके वहीं पर आ जाएंगे जहां से हमारी शुरू होती है। अभी पिछले महीने में क्लियर लेक में एक इंटरफेथ की प्रोग्राम में हिंदुइज्म के ऊपर 2 दिन का एक सीरीज था, लेक्चर सीरीज गया था देने, तो वहां एक 70 या 78 ईयर के बीच में एक ओल्ड मैन थे। 2 दिन तक सैकड़ों टॉपिक पर डिस्कशन हुआ, 2-2, 3-3 घंटे का सेशन था, पर वो महाशय घूम फिर के हमेशा काम सूत्र पर आ जाते थे। और यकीन मानिए 90% हिंदुओं को अभी भी पता नहीं होगा ये काम सूत्र क्या बला है। मैंने उनको समझाया इसका हिंदू धर्म से कोई लेन देन नहीं, वो कि इंडियन लिटरेचर है अबाउट सेक्स, नथिंग टू डू विथ हिंदू धर्म। पर वो 2 दिन में कम से कम दर्जनों क्वेश्चन सिर्फ काम सूत्र से रिलेटेड पूछा। दिमाग वही चलता है ना, उसी के आसपास, और आगे जाता ही नहीं है। मैं सरप्राइज हुआ, एक आदमी 2 दिन से कंस्टेंटली एक ही टॉपिक को, टॉपिक क्या चल रहा है घुमा फिरा के वही पहुंच रहा है। ये पर्सनालिटी होती है। ये कहां से आया? इन्फ्लुएंस, अलग अलग तरीके से हमारी, देखिए ह्यूमन बींग का जो नेचर है, जो माइंड है, वो चमेलियन की तरह होता है। शुरुआत में, बिगिनिंग में जो कलर बदलता है डिपेंड्स ऑन डिफरेंट बैकग्राउंड्स। घास में हो, पत्तों के बीच में है, वो ग्रीन रहता है, मिट्टी में आ जाए वो ब्राउन बन जाता है। शुरुआती दौर पर हमारा माइंड ऐसे ही होता है, जिस भी एटमॉस्फेयर में जाए वहीं का ढल जाता है। बाद में धीरे 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 इनविजिबली हमें पता ही नहीं चलता हमारे अंदर से वही गुण कब हमने इनकल्केट कर चुके हैं, और हम उसी तरह के रिएक्ट करने लग जाते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर समझना है जो एसोसिएशन या कंपनी का क्या इंपैक्ट होता है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप भी करेंगे। पति पत्नी बनने से पहले अगर आप एक दूसरे से मिले हो, या पति पत्नी के बाद में एक दूसरे से मिले हो, काफी सारे चीजों के बारे में आपके डिफरेंट ओपिनियंस हुआ करता था, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से आए। पता नहीं 10-15 साल के बाद, 5-10 साल के बाद मोस्ट ऑफ टॉपिक पर पति पत्नी की सेम ओपिनियन होता है। पति को अगर लगा यह आदमी बुरा है, पत्नी को समझाना नहीं पड़ता है कि बुरा है, वो मान जाती है बुरा है। अगर शादी नहीं हुई होती, एक डिफरेंट आइडेंटिटी होती, वो शायद कुछ दूसरा रिमार्क देता। अगर पत्नी को लगा कि ये खराब है, ये पड़ोसी खराब है, पति को भी खराब लगने लग जाता है। ये क्या है, एक दूसरे को डाइजेस्ट इन्फ्लुएंस्ड हम इतना हो चुके हैं, अब हमें समझ में नहीं आता है कि कहां सही है गलत है, बस हम इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं। और फिर क्या होता है ना, हमारा फ्रेंड सर्कल भी उसी तरह के बन जाते हैं, या हम उन्हीं की तरह बन जाते हैं, या हम उन्हीं की तरह चूज कर लेते हैं। आप आज तक बड़े भले आदमी थे, शराब पीने को मन किया आदत डालने की, अभी तक आपको लगता था कोई ह्यूस्टन में बहुत कम शराब पीने वाले लोग हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन पीता है, 2-4 लोगों को देखा होगा। और आपने आज कहा कि नहीं, अब मैं थोड़ा थोड़ा पीना शुरू करूंगा, पता चला 2 महीने के बाद तो आपको हजारों में लाखों में टोली मिल जाएगी आपको सपोर्ट करने के लिए, रोज शराब की पार्टी में इनविटेशन भी आ जाएगा। जैसे ही आप कोई चीज चूज करते हैं, एसोसिएशन अपने आप मिलने लग जाता है। महाभारत का बड़ा सुंदर श्लोक है, वस्त्रमापस्तिलान भूमिम गंधो वासयते यथा पुष्पाणामधिवासेन तथा संसर्ग जागुणाः मोहजालस्य योनिर्हि मूढैरेव समागमः अहन्यहनि धर्मस्य योनि साधु समागमः। जैसे कपड़े होते हैं, पानी है, मिट्टी है, या दिया सीसम सीड का नाम दिया, जैसे वो किसी पर्टिकुलर फ्लावर से एसोसिएट हो जाएं, सुगंध वाले, उनमें वही स्मेल आने लग जाते हैं। अब कभी कभी वाटर रखते हैं ना, ये वाटरमेलन का वाटर, चुकुम्बर का वाटर, वो वाटर में ये गुण होता है, जिसके भी कंपनी मिले वो उसी के स्मेल वाला बन जाता है। इंसान का नेचर वही होता है, हम माने न माने कंस्टेंट कंपनी से एसोसिएशन से हम उसी तरह के बन जाते हैं। अगला श्लोक मंत्र कहता है, ओनली एसोसिएशन विथ फूल्स प्रोड्यूसेस एन इल्यूशन दैट एंटेंगल्स द माइंड एज डेली कम्युनियन विथ गुड एंड वाइज लीड्स टू द प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यू। जब मूर्खों के साथ आप बैठने लगेंगे तो यकीन मानिए आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपकी हर डिसीजन में वो फुलिशनेस दिखेगा। और आप कितने भी अनपढ़ हो, आप अगर पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठते हैं, यकीन मानिए आपके सोच में वो ज्ञान झलकेगा, आप कितने भी अनपढ़ और गंवार हो। शंकराचार्य के बारे में एक कहानी होती चलती है। शंकराचार्य जब दिग्विजय करने निकले, शास्त्रार्थ करके दोबारा लोगों को वैदिक धर्म में वापस लाने के लिए पूरे देश भर में भ्रमण कर रहे थे, तो मिथिला में पहुंचे, मिथिला जो आजकल बिहार में है, और उनको पता चला कि यहां एक बहुत बड़े विद्वान है, पंडित मंडन मिश्रा, और वो कर्मकांड के और मीमांसा दर्शन के बड़े विद्वान है, पर उनका मानना है कि वेद सिर्फ कर्मकांड के लिए, रिचुअल के लिए है, और कोई यूज नहीं है, और बड़े प्रकांड विद्वान है। तो उनको मन हुआ कि मैं उनको शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज करूं। काफी लोगों से सुना, बड़े ज्ञानी है। पूछते पूछते उस गांव में पहुंचे तो गांव में किसी से पूछा कि मंडन मिश्र जी का घर कहां पर है। तो लोगों ने बोला कि जिस घर के चारों तरफ ये पिंजरे में तोते, पहले जमाने में लोग तोते पालते थे, और वो तोते बोल रहे होंगे क्या कि जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम, ये जगत मिथ्या है ब्रह्म सत्य है, ये सत है ये असत है, ये धर्म है ये अधर्म है। तोता जहां बोल रहे होंगे समझ लेना कि वही मंडन मिश्र जी का घर है। तोता कैसे बोलेंगे, तोते पैरट की आदत है, जो भी सुने उसी को रिपीट करें। तो पंडित जी के घर में क्योंकि रोज शास्त्र चर्चा होती है, ज्ञान की चर्चा होती है, तोते सुनते सुनते वही बोलते। ऐसे ही किसी के घर में गए, किसी और ने बताया। अब जिसके घर में रोज सुबह से शाम तक गालियां चलती हो और वहां 10-20 तोते बंधे हुए हो, अब घर में जाते ही तोते आपको कैसे वेलकम करेंगे, सीधे वहीं से शुरू करेंगे। ये है संगत दोष या गुण, जो भी आप जैसा भी लीजिए। महाभारत में 2-3 कैरेक्टर है, एक कर्ण है, द्रोण है, भीष्म है, सारे बड़े ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे। भीष्म तो उस समय का सबसे बड़ा ज्ञानी था, द्रोण तो गुरु था, और कर्ण भी बड़े ज्ञानी, समझदार, अपने अपने फील्ड में एक्सीलेंट थे, जिसको आज की भाषा में कहें हाईली एजुकेटेड, क्वालिफाइड, वेल एस्टैब्लिश्ड, बहुत बढ़िया स्टेटस है, सब कुछ है, पढ़े लिखे ज्ञानी और वेल नोन है, वेल रेस्पेक्टेड है, अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर है, पर हमेशा बुराई का साथ दिया। क्यों? जिन लोगों के साथ बैठते उठते थे वो कौरव थे, और एक तरफ कृष्ण थे जो पांडवों के दोस्त थे। तो इसीलिए पांडव एक गलती भी करे ना, उनको कोई होता था जो टोकने वाला। कृष्ण बड़े डिप्लोमेट थे, स्ट्रैटेजी बनाते थे, पर शकुनी भी स्ट्रैटेजी बनाता था, डिप्लोमेट था, पर आप कृष्ण को पूछते हो, शकुनी को गाली देते हो। पांडवों का सत्संग कृष्ण से हुआ तो वो सत्संग बन गया, कौरवों का संग शकुनी से हुआ तो कुसंग बन गया। दोनों स्ट्रेटेजिस्ट थे, दोनों डिप्लोमेट थे, दोनों मास्टरमाइंड थे, पर एक बर्बाद हो गया एक के चक्कर में, एक की तरफ आबाद हो गए। इसीलिए संस्कृत में बड़ा खूबसूरत श्लोक है, कहते हैं वरम पर्वत दुर्गे शुभ्रांतम वनचरी सह नमूर्ख जन संपर्कात सुरेंद्र भवनेश्वपि। ये अच्छा है कि ना, वरम जानवरों के साथ जंगल में पहाड़ों में घूमना भूखे प्यासे, पर अगर मौका मिले, चॉइस दिया जाए कि स्वर्ग में मूर्खों के साथ रहना है या जंगल और पहाड़ों में जंगली जानवरों के साथ रहना है, तो कहते हैं समझदार लोग चुनेगा कि मुझे जंगल में जानवरों के साथ मंजूर है, मूर्खों के साथ स्वर्ग मंजूर नहीं है। एक बार एक राजा का बड़ा वफादार नौकर था, बड़ा वफादार, वफादार समझते, बिल्कुल राजा के लिए जान देने को तैयार है। राजा एक बार सोए हुए थे, नींद में थे, एक मक्खी बार बार परेशान कर रहा था राजा को। तो नींद में होता है आदमी ऐसे करता है, आधा नींद है, कच्ची नींद है, राजा को बड़ी परेशान करता था मक्खी। वफादार नौकर से देखा नहीं गया तो उसने तलवार निकाला, राजा के नाक पर मक्खी बैठी हुई थी, उसने मारा मक्खी पर तलवार, मक्खी थोड़े ही मरेगी, राजा का नाक कट गया। वफादार दाती, वफादार था। बोलिए, यह है मूर्खों का संग। तो जब भी आप, आपकी सोसाइटी इंडिविजुअल हो, कम्युनिटी हो, सोसाइटी हो, गलत लोग हो, फुलिश हो, मूर्खों के संगत करेंगे, अधपढ़ लोगों के संगत करेंगे, तो उसी तरह का आपके विचार बनते जाएंगे, सोच बनते जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बनता जाएगा। जैसे ही आप अपना बदलने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके विचार बदल जाएगा। इसी को कहते हैं सत्संग करना। सत्संग का सिंपल अर्थ है अच्छे लोगों के साथ बैठना, उठना, विचार करना, डिस्कस करना। इसीलिए जो धार्मिक प्रवचन होता है उसको भी सत्संग बोला जाता है, अच्छी चीजें सुनने, सुनना, बातें करना, डिस्कस करना। अंग्रेजी में सत्संग का जो ट्रांसलेशन होता है, संग और एसोसिएशन विथ सज्जन, मतलब गुड पीपल। भारत में एक बड़े मॉडर्न फिलोसोफर हुए जेडी कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति का किसी के साथ डिस्कस हुआ, उनके क्वेश्चन पूछने वाले ने पूछा ये सत्संग का क्या अर्थ है, तो उन्होंने पूछा आपको क्या लगता है, बोला सिंपल ट्रांसलेशन है एसोसिएशन ऑफ वाइज पीपल, ज्ञानी लोगों के साथ बैठना उठना। बोले नहीं, ज्ञानी नहीं, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना। ज्ञानी होना अच्छा होने का गारंटी नहीं है, रावण भी ज्ञानी था, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, ज्ञानी लोग हैं, अच्छा नहीं है। पर अगर कोई अच्छा है तो ज्ञान अपने आप उसके अंदर है। अच्छे लोगों के साथ बैठो उठो, ज्ञानी अच्छा आदमी ही ज्ञानी है, ज्ञानी अच्छा होना गारंटी नहीं है, ये ध्यान देना जरूर सत्संग में। अच्छे लोगों के साथ बैठें, उठें, डिस्कस करें। प्राचीन काल में सत्संग एक डेली ड्यूटी होता था, जो हमारी व्यवस्था थी। आपको पता है हमारे यहां एक व्यवस्था है भिक्षा की, जो आजकल खत्म हो गई। भिक्षा समझते हैं, आल्म, भिक्षा देना या लेना। जब बच्चों का जनेऊ संस्कार होता है वहां एक संस्कार होता है, उसको कहते हैं भिक्षा संस्कार। बच्चा भीख मांगना सीखता है, उसको सिखाया जाता है। क्यों? उसके पीछे बड़ा रहस्य है। इसका अर्थ यह नहीं कि बच्चों को भिखारी बनाना था, रेड लाइट पर खड़ा करना था, ऐसा कुछ नहीं। हमारी सिस्टम ऐसा बना हुआ था, बच्चा स्टूडेंट लाइफ में, जिसको आप ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, वो पैसा कमा नहीं सकता। जो वानप्रस्थ है, जो रिटायरमेंट की लाइफ जीता है, वो समाज सेवा में और ईश्वर भक्ति में समय बिताता है, वो भी पैसे से दूर रहता है, धन संपत्ति घर से। और सन्यासी डेफिनेटली वो तो लाइफ ऑफ रिनाउंसिएशन सब कुछ त्याग रखा है। तो सोसाइटी में ये तीन वर्ग हैं, तीन क्लासेस हैं, जिनको भिक्षा पर गुजारने के लिए आदेश है। क्यों? भिक्षा पर ही क्यों? क्योंकि भीख मांगने से जो सबसे बड़ा होता है, फल मिलता है, वो आपके ईगो को चोट करता है। आदमी बहुत जब तक अपने आप को बहुत ज्यादा गिरा ना दे तब तक वो भीख मांगने को तैयार नहीं होगा। भीख मांगने से व्यक्ति के अहम को, ईगो को ठेस पहुंचता है और यही ठेस पहुंचाना उसका पर्पस था। तुम्हें हर मोमेंट में तुम्हें ये ठेस पहुंचे और जिससे कि तुम्हारा ईगो एक दिन चूर चूर हो जाए, तब तुम बढ़िया सन्यासी बनोगे। अहंकार मुक्त ईश्वर प्राप्ति का सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल होता है वो होता है हमारा ईगो। टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये है कि गृहस्थ के घर में रोज कोई ना कोई भिक्षा मांगने जाएगा, जो भी पहुंचेगा घर की गृहस्थी के घर में, गृहस्थी का काम है कि उस अतिथि का वो सत्कार करे। पर आपको पता है जो अतिथि सत्कार का जो रूल है वो रूल वन साइडेड नहीं है कि गृहस्थ उसकी सिर्फ सेवा करे, उसको खिलाए पिलाए, उनकी ख्याल रखे, रेस्पेक्ट करे, नहीं। ये कंडीशनड होता है। कंडीशन क्या है? आप उसको रेस्पेक्ट करो, खाना खिलाओ पिलाओ, रेस्ट कराओ, जो भी देना है दो, पर उससे बिना कुछ पूछे उसको छोड़ना नहीं, उसको बैठा के उसके पूछना कोई ज्ञान की बातें, कोई घर गृहस्थी की बातें, जहां भी तुम्हारी कोई डाउट है, कुछ भी क्यूरियोसिटी है, उससे पूछना, उसे डिस्कस करना, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा एक घंटा कोई ज्ञान की बातें करना। हो सकता है उसकी बातें तुम्हें समझ में ना आता हो, उसकी बातें तुम्हें ठीक ना लगता हो, पर जरूर पूछना, जरूर सुनना, तभी पूरी अतिथि सेवा पूरी होती है। अतिथि सेवा का जो पैकेज है वो तब पूरी होती है जब अतिथि से आप कुछ ज्ञान लेते हो, अगर नहीं तो अधूरा अतिथि, अधूरी अतिथि सेवा। कोई भी ज्ञानी विद्वान अच्छा आदमी घर में जाए उसको बिना उसे ज्ञान लिए छोड़ना नहीं। पर हम तो सोकल्ड इतने एजुकेटेड हैं, हम लोगों के घर जाते हैं बोल बोल के थक जाते हैं, कुछ पूछ लो डिस्कस कर दो, कुछ नहीं। मोदी ट्रंप के अलावा कोई टॉपिक आता ही नहीं है। ये ट्रेडिशन था ज्ञान, अतिथि से ज्ञान लेने का। इसी को कहते थे सत्संग। अच्छे लोग घर में आए, कुछ उससे ले लो, उसकी कंपनी से, एसोसिएशन से कुछ ज्ञान ले लो। सत्संग से होता क्या है? और कुछ हो ना हो, मन में प्यूरिटी आती है। जब समझदारी बढ़ती है तो मन पवित्र होता है, अच्छे विचार बढ़ते हैं, बुरे विचार कम होते हैं। यही है प्यूरिफिकेशन, माइंड की प्यूरिटी क्या चीज है? अच्छे विचार ज्यादा से ज्यादा आए, नेगेटिव विचार कम आए, बुरे विचार कम आए, सुपरस्टिशियस विचार कम आए, यही है प्यूरिटी। सत्संग में डिस्कस करना, मेडिटेशन करना, पूजा पाठ हवन करना, इससे स्पिरिचुअली हम चार्ज्ड होते हैं। दिन भर, हफ्ते भर, महीने भर, साल भर तो हम डे टू डे लाइफ की सांसारिक चीजों में बिजी रहते हैं, ये भी जरूरी है। पर जब दिन में, महीने में, हफ्ते में जब भी मौका मिला, थोड़ा कोई अच्छी चीजों की डिस्कशन हम करते हैं, कोई ऐसी चीजों की बात करते हैं जो डे टू डे लाइफ के साथ दूर है, धन नाम पैसा रिलेशनशिप बच्चा, इनसे कोई दूसरी चीजें बात करते हैं, तो वो भी ये आत्मा का खुराक होता है। शरीर की खुराक के अलावा कभी कभी आत्मा की खुराक सत्संग से ही मिलता है, और इससे मोटिवेशन मिलता है, कुछ अच्छे काम करें, दूसरों का भला करें, रेस्पेक्ट करना करें, सबको पता है। पर अच्छे लोगों के साथ बैठने से नहीं, डिस्कस करने से, चर्चा करने से, सुनने से मोटिवेशन होता है, रिफ्रेश होता है, चीजें बनती रहती है। और डेफिनेटली सत्संग का जो आखिर गोल है स्पिरिचुअल लाइफ की ओर थोड़ा मोटिवेशन बनता है, जो बहुत मुश्किल है। क्यों जाना, महाभारत का श्लोक है, असताम दर्शनात् स्पर्शात् संजल्पन सहासनात् धर्माचार परहीयन्ते न च सिद्ध्यन्ति मानवः बुद्धिश्च हीयते पुंसाम् नीचैः समागमात् मध्यमैर्मध्यताम् याति श्रेष्ठताम् याति चोत्तमैः। जो डिसऑनेस्ट हैं, गलत लोग हैं, सही नहीं है, ऐसे लोगों के साथ को मिलने से, बैठने से, छूने से, डिस्कस करने से, टाइम पास करने से धर्माचार नष्ट होता है, अच्छे विचार कम होते जाते हैं। हमने बहुत सारे जगह, आप भी देखते हैं पार्टी में कहीं भी, ऐसे व्यक्ति के पास आप बैठ गए किसी टेबल पर, व ऐसे लोगों के साथ जिनको रिलीजियस चीजों में या ऐसे चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो मजाक उड़ाते हैं या इस तरह के फन करते हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर थोड़ी देर के लिए भाव पैदा होता है, कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं हूं। अगर आप कोई ऐसे जगह पर बैठते हैं जहां लोग गलत काम को पसंद नहीं करते हैं, चोरी करना, शराब पीना, नशा करना करते हैं, जब आप वहां बैठते हैं तो आपको इस तरह के भाव आता है कि ये शराब पीना गलत बात है, ये गलत है, ये गलत है, तो ये दोनों वाइस वर्सा चलता है। ये महाभारत का श्लोक कहता है, आप जैसे लोगों के साथ बैठोगे विचार धीरे धीरे वैसे ही बनता है। अधम बहुत लोअर क्वालिटी के लोगों के साथ बैठेंगे तो आपके विचारों में वो लो लेवल धीरे धीरे आता रहेगा। मीडियम टाइप के लोगों के साथ बैठेंगे तो विचार भी मीडियम बनेगा। बहुत अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो विचार भी बहुत अच्छा बनेगा। आपके विचार में कम बहुत होता रहता है। आप भी अपने लाइफ में देखेंगे, आपके बच्चे, आप खुद या आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे अचानक ये व्यक्ति जो आप 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से जिस रूप में देखा, अचानक उसके बिहेवियर में कुछ चेंज दिखता है। हो सकता है ज्यादा रिलीजियस हो गया हो सकता है ज्यादा कनिंग हो गया हो सकता है ज्यादा मैटेरियल हो गया हो। अगर आपको लगे, यकीन मानिए, पता लगाएंगे तो पता चलेगा उसका किसी नए आदमी से दोस्ती हुई है, जिसके कारण उसके व्यवहार में आपको इतने दिनों में अचानक कोई चेंज दिखने लगा, कोई भी चेंज, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो। और वो इफेक्ट इतने सटल लेवल पर होता है, व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि मेरे जीवन में ये चेंजेस हो चुका है, मेरा एटीट्यूड में चेंज हो चुका है, मैं कुछ अलग ढंग से रिएक्ट करता हूं। पता ही नहीं, आप बताएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा जब तक उसके अंदर अवेयरनेस ना आए कि मैं जो कर रहा हूं ये मैं पहले की तरह क्यों नहीं हूं। अगर अच्छा है तो गो अहेड, बुरा है तो नुकसान होता है। एक बड़ी सुंदर कहानी है, एक जंगल में एक शेर का परिवार था, तो उनके शेर के फैमिली में एक छोटा शेर का बच्चा आया, तो पूरी फैमिली घूमते थे, शिकार करते थे, पानी पीते थे, जंगल में खेलते थे। एक दिन घूमते घूमते शाम हो गई और वो छोटा बच्चा किसी कारण से अपने मां बाप से अलग हो गया। अब अंधेरा हो गया, उसको समझ में नहीं आया मेरे मां बाप कहां गए, वो परेशान हुआ, मां बाप कहीं दूर चले गए, दिखाई नहीं दिया, और वो परेशान होकर के भटकता रहा इधर उधर। गलती से वो एक ऐसे मैदान पर चला गया जहां एक भेड़ चराने वाले के काफी सारे भेड़ चर रहे थे, तो 100-200 ऐसे बहुत सारे भेड़ होते हैं, वो भेड़ों के बीच में वो शेर का बच्चा भी घुस गया, बच्चा है वो घुस गया। भेड़ चराने वाले को अंधेरे में ज्यादा कुछ दिखा नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा है, तो वो भी उसको हांक करके गांव ले गया। अगले दिन सुबह जब दोबारा भेड़ों को खोल के वो भेड़ चराने जाए, देखा इसके बीच में ये शेर का बच्चा है। वह ठीक है, वो खुशी की बात है, गांव में उल्टा प्राउड फील होता है, देखो मैं शेर पालता हूं, रहेगा रहेगा, छोटा बच्चा अभी तो कुछ खराब भी नहीं कर सकता। देवियों सज्जनों, शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में रहने लगा। समय बीतता गया, समय बीतता गया, अब शेर का बच्चा बड़ा हो रहा है, पर वो घास खाता है, पानी पीता है, मैं करता है, और जब भेड़ चराने वाला उसको डंडे से हांकता है तो डर के मारे छुप जाता है। शेर बड़ा हो चुका है, जवान शेर है, भेड़ों के बीच में अलग से दिखता है, वो फिजिकली वो दिखता है कि कितना बड़ा खतरनाक शेर है, पर जब भी भेड़ चराने वाले का डंडा देखता है वो भेड़ की तरह मैं करता है और भेड़ों के बीच में छुप जाता है। गांव वाले बड़े प्राउडली बोलते हैं, ये बड़ा शेर चराने वाला है। एक दिन वो शेर भेड़ों के साथ घास चर रहा था, एक दूसरा शेर ने उसको देखा दूर से, जंगल के पास से, उसको बड़ा आज एक बिल्कुल सरप्राइजिंग चीज दिखा कि खाना और खाने वाला दोनों साथ हैं, भेड़ और भेड़ को खाने वाला शेर साथ साथ घूम रहे, घास खा रहा है, पानी पी रहा है। उसको समझ में नहीं आया, उसने बोला कुछ दाल में काला है, पता लगाते हैं। उसने वो शेर को बोला, शेर के बच्चे को जो भेड़ों के साथ है, इधर सुनो, शेर की दहाड़ सुन के जवान शेर घबराया, मैं करके छुप गया, जैसे भेड़ छुप गए। उसको लगा दाल में काला नहीं, काल दाल ही पूरी काली है। उसने कहा मैं तो कुछ पता लगा के रहूंगा, क्या प्रॉब्लम है। अगले दिन वो शेर दोबारा आया, बुढ़ा शेर, कोशिश किया उससे मिलने के लिए, बड़े मुश्किल से देखा। एक दिन वो एक तालाब के पास पानी पी रहा था, उसने दूर से बोला घबराना नहीं, बस पानी में अपना शक्ल देखो। शेर जवान शेर ने शक्ल देखा, बोला बताओ कि तुम्हारा शक्ल किससे मिलता है, मेरे से या इन भेड़ों से। बोला तुम्हारे से मिलता है। बोले तुम मेरे ही हो, हमारे ही भाई हो, भेड़ों के बीच में क्या करते हो, आ जाओ। वो डर गया कहीं मुझे खा ना ले, उस दिन भी भाग गया। फिर अगले दिन पकड़ा उसको सेम जगह पर, बोला देखो तुम शेर हो, देखो मेरे तरह दहाड़ो, हा करके वो दहाड़ा तो मैं करने लगा। देवियों सज्जनों, कंपनी एसोसिएशन याद रखिए, संघ, बड़े कोशिश करने के बाद एक दिन बुढ़े शेर सफल हुआ उससे बुलवाने के लिए, दहाड़ने के लिए। कोशिश करता रहा महीनों तक, एक दिन अचानक कोशिश करते करते जवान शेर ने शेर की तरह दहाड़ने लगा। बोला देखा, मैं कह रहा था ना तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, शेर की तरह दहाड़ते हो, तेरा सकल सूरत भी शेर की तरह, भेड़ों के बीच में रहते हो, शर्म नहीं आता है, ये तुम्हारा खाद्य है, खाना है, इनको खाओ, देखो कैसे शिकार करते हैं। बुढ़ा शेर ने शिकार करके दिखाया, पर नहीं हुआ। दो चार दिन के बाद जवान शेर ने कोशिश की और अपने साथियों में से एक शेर को, भेड़ को पकड़ा, शिकार भी किया। बुढ़ा शेर ने कहा देखा तू शेर है, भेड़ों के बीच में रहते रहते भेड़ बन चुके हो, ये जो भेड़ चराने वाला तुझे हांकता है ना, ये भी तुम्हारा शिकार बन सकता है, डरो मत, उस पर झपट मारो, देखो वो दौड़ेगा तुम नहीं। उस दिन शेर का जवान शेर शेर बन गया। ये कहानी हमारी और आपकी लाइफ की कहानी है। कभी कभी हम शेर होते हुए भी भेड़ों के साथ रहते रहते भेड़ बन जाते हैं। कभी कभी भेड़ होते हुए भी शेरों के साथ रहते रहते शेर बन जाते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा एसोसिएशन कैसा है। आप एसोसिएशन चेंज करिए, संघ बदलिए, आपका विचार बदल जाएगा, सोच बदल जाएगा, आप देखेंगे फिर आप भी शेर की तरह दहाड़ेंगे। इसीलिए ये महाभारत का अगला मंत्र कहता है, तस्मात् पराज्ञैश्च वृद्धैश्च सुस्वभावैः तपस्विभिः सद्भिश्च सह संसर्ग कार्यक्षम परायणैः। इसलिए देयरफॉर दे द डिजायर इमेंसिपेशन शुड एसोसिएट विद दोज दैट आर वाइज एंड ग्रोन अप एंड ऑनेस्ट एंड प्योर इन कंडक्ट एंड पोजेस्ड ऑफ एस्केटिक मेरिट। अगर लाइफ में कभी मन करे कि मुझे स्पिरिचुअल रास्ते पर जाना है तो ऐसे ही लोगों से मिलिए जो स्पिरिचुअलिटी में हो, जो ऑनेस्ट हो, सीधे साधे हो, सिंपल हो, ज्ञानी हो। पैसा कमाने के रास्ते पर जाना है तो ऐसे ही लोगों के साथ मिलिए जो पैसा कमाने का टारगेट रखते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तभी आप पैसा कमाने में सफल। जिस फील्ड में जाना है उन्हीं लोगों के साथ बैठिए उठिए, आप देखेंगे आधा काम आपका बन जाता है। बौद्ध धर्म का जो मूल त्रिपिटक है, जैसे हिंदुओं में वेद होता है उनके त्रिपिटक होता है, तीन अलग अलग टाइप के ग्रंथ होते हैं, उसमें ग्रंथ का नाम होता है सुत्त ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ। उसमें वन ऑफ द जो बहुत रेस्पेक्टेड ग्रंथ होता है महामंगल सूत्त, तो उसमें उसकी बिगिनिंग में एक स्टोरी आती है। कहते हैं एक दिन एक चमकीला कोई देवता पधारे और महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे और पूछा, उस हाईएस्ट ब्लेसिंग को, परम आनंद को पाने का उपाय क्या है। ये महामंगल सूत्त की बिगिनिंग में आता है। बुद्ध ने बोला दो तरीकों से ये परमानंद की प्राप्ति का रास्ता खोलता है, एक अवॉइडिंग फूल्स, टू एसोसिएटिंग विथ वाइज। पाली भाषा में जो कि त्रिपिटक पाली भाषा में लिखी होती है, असेवन च बालानाम पंडितानाम च सेवनम। मूर्ख, अधपढ़, अनपढ़, कम जानने वाला, बुरे लोगों के संग को कम करना, छोड़ना, अच्छे समझदार ज्ञानी लोगों के साथ रिश्ता बनाना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द परमानंद। ये है संग। फिर वो लिखते हैं, बुद्ध सेज दैट ही सीज नो अदर एक्सटर्नल फैक्टर दैट लीड्स टू सो मच हार्म एज बैड कंपनी, संस्कृत में कहते कुसंग, and no other external factor that leads to so much benefit as good company. फिर आगे लिखते हैं, the truly wise and compassionate friend is one. कैसे जानेंगे कि कौन अच्छा है, किस व्यक्ति के साथ हम बैठें, दोस्ती करें, मित्रता करें या संबंध बढ़ाएं। आपको लग रहा होगा जो आपको पॉजिटिव बातें करे, आपको प्रमोट करे, नहीं, ये वेस्टर्न स्टाइल है। ईस्टर्न स्टाइल उल्टा है, वो कहता है नहीं, वो व्यक्ति हु विथ अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपथी ऑफ हार्ट, जिसके दिल में तुम्हारे प्रति सिंपथी है बट इज रेडी टू क्रिटिसाइज यू, टू पॉइंट आउट योर फॉल्ट्स, टू एग्जॉस्ट एंड एनकरेज, एंड परसीविंग दैट द फाइनल एंड ऑफ सच फ्रेंडशिप इज ग्रोथ इन द धम्म। धम्म पाली में धर्म को धम्म कहते हैं बौद्ध भाषा में। शंकराचार्य का वो एक श्लोक है, वो है भज गोविंद स्तोत्र है, उसका ये 9th श्लोक है, मजेदार है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्त्वम, निश्चल तत्त्वे जीवन मुक्ति, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। ये थोड़ा स्पिरिचुअल है, हो सकता है आपको इतना इंटरेस्ट ना हो, पर जानना चाहिए। जब आप सत्संग करते हैं तो निस्संगता आती है, नॉन अटैचमेंट की अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर प्रैक्टिस करते हैं। जब आप नॉन अटैचमेंट को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप डिल्यूजन से फ्री होते हैं। जब आप डिल्यूजन से फ्री हो जाते हैं तो आप सेल्फ नॉलेज के अधिकारी बनते हैं, और जब आपको आत्मज्ञान होता है तो आप मुक्त होने के रास्ते पर जाते हैं। कंक्लूड करेंगे, ये वही जहां से हमने शुरू किया, भर्तृहरि के श्लोक से आरंभ किया, उसी से एंड करेंगे। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेत प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। कहते ये जो सत्संगति, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना एसोसिएट करना, क्या क्या लाइफ में नहीं करता है। इट रिमूव्स द माइंड्स डलनेस, इट स्प्रिंकल्स ट्रूथ इन योर स्पीच, एंड ऑल्सो इट इंक्रीजेस डिग्निटी, इट ड्राइव्स अवे एविल थॉट्स एंड एविल एक्ट्स, एंड इट प्यूरिफाइज योर माइंड एंड इंटेलेक्ट, इट स्प्रेड्स फेम एवरीवेयर। यू टेल मी व्हाट डज गुड कंपनी नॉट प्रोवाइड टू मैन। इसीलिए देवियों सज्जनों, मेक ए कमिटमेंट टू स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम विद गुड पीपुल इन योर लाइफ, एंड यू विल सी हाउ योर लाइफ इज ड्रामेटिकली एंड ड्रास्टिकली चेंजेस। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।